नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार मिश्र न्यूज़ 18 हिंदी के हेल्थ पॉडकास्ट में एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेहत से जुड़े नए मसले के साथ। आज बात करेंगे सर्दियों में फिजिकल वर्कआउट की, और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद होंगी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर सीमा ग्रोवर। डॉक्टर सीमा, न्यूज़ 18 हिंदी के हेल्थ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार मिस्टर मिश्रा।
डॉक्टर सीमा, आज के बातचीत की शुरुआत मैं खुद से करता हूँ। दरअसल मैं आजकल हर शाम खुद से एक वादा करता हूँ। ये वादा है कि कल सुबह उठकर मैं फिजिकल वर्कआउट जरूर करूँगा, लेकिन सुबह होते होते मेरा यह वादा दम तोड़ने लगता है। मुझ जैसे ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो खुद से ये वादा करते हैं और सुबह उनका ये वादा दम तोड़ देता है। तो हम जैसे लोगों को पहले ये समझाइए कि सुबह का वर्कआउट हम सबके लिए कितना जरूरी है।
देखिए, मौसम कोई भी हो, सर्दी या गर्मी, फिजिकल वर्कआउट बहुत ही जरूरी है। आजकल हमें पता ही है कि हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, और कितनी मेटाबॉलिक, मतलब हमारे बॉडी की जो सिस्टम्स हैं उससे रिलेटेड कितनी हमारी डिजीजेस हैं जो एट राइज हैं। छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी, बड़े लोगों में बहुत ज्यादा कैंसर और ये सब डिजीजेस पाए जाना, और वन ऑफ द मेजर रीजन इसका एक कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। इतना इट इज द वर्ल्ड इज ऑफ कंप्यूटर एरा, लोग बैठ के बहुत काम करते हैं, तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। इसके कारण कितनी सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की हम सब रिस्क पे हैं। कितनी बार हम सुनते हैं कि बहुत यंग लोग अचानक से डेथ हुआ, और स्पेशली विंटर सीजन में। सो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि कुछ ना करने से तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना लाजमी है। जैसा बोला गया, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, कि बैठना उतना ही खतरनाक है जैसा कोई सिगरेट पीता है और अपने फेफड़े खराब करता है। तो अगर हम लगातार बैठे रहते हैं तो पहली चीज हम अपने आप को प्रॉमिस करें कि हम फिजिकली ज्यादा एक्टिव होंगे, चाहे वो हमारे घर के काम है चाहे हम ऑफिस में हैं। तो लगातार ना बैठें, दैट इज फर्स्ट थिंग। और सुबह उठ के, स्पेशली इस विंटर सीजन में क्योंकि ठंड है, तो जो लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है कि वो सुबह सुबह की एक्सरसाइज करने का ना सोचे, वो फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ाए। जो कि अगर लेडीज हैं तो, जो हाउसवाइफ्स हैं तो घर के कामों में ज्यादा फिजिकली एक्टिव होए, जो लोग बाहर हैं तो दे शुड बी मोर फिजिकली एक्टिव, चाहे वो वॉकिंग ही हो। तो बहुत जरूरी है बेसलाइन की सबको फिजिकली ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना जरूरी है।
डॉक्टर सीमा, यहाँ तक की बात हम सबको समझ में आ जाती है, और हम सब ये मानते हैं कि हर सुबह उठकर हमें फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन समस्या इसके आगे खड़ी होती है। दरअसल फिजिकल वर्कआउट को भी अब मौसम वार बांट दिया गया है। बहुत सारे हम फिजिकल ट्रेनर से सुनते हैं कि आपको गर्मियों में इस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, सर्दियों में इस तरीके की एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो मेरा अगला सवाल यही है कि सर्दियों के मौसम में हमें किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और किन एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए।
हाँ देखिए, जरूरी है, गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है तो हाइपरथर्मिया, मतलब ज्यादा गर्मी से हीट स्ट्रोक वगैरह हम सुनते हैं, वो हो जाते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते, सडनली बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको भी ये सब होने का अंदेशा रहता है। तो और विंटर्स हैं, विंटर में हाइपोथर्मिया, ठंड लग जाने से, अगर कोई बहुत ठंडे इलाके में है तो फ्रॉस्ट बाइट और ये सब हो सकते हैं। तो क्या जरूरी है कि हम जब भी कोई मांसपेशियां इस्तेमाल करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं, तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है
जी।
और अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉडी उसको कूल डाउन करने का एक तरीका है, पसीना आता है। लेकिन विंटर में पसीना नहीं आता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो बॉडी का है वो कम हो रहा है, तो कई चीजें हमारे को नुकसानदेह हो सकती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर्दियों में स्पेशली जो लोगों का बॉडी फैट कम है, या जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, बड़ी उम्र के हैं, या जिन्होंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स कह लें, या खाना खाए बहुत देर हो गई और सडनली सोचे बहुत एक्सरसाइज करना है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, मतलब शुगर लेवल इन द बॉडी वो अगर कम हो जाए, तो हमें वो परेशानी हो सकती है ठंडे मौसम में एक्सरसाइज करना। बट गर्मी की बनिस्पत अगर हम सर्दी में एक्सरसाइज करते हैं तो एज पर से हमें बहुत कोई खतरा नहीं रहता है। स्पेशली उन लोग को ध्यान रखना है जिनको रेस्पिरेटरी या कुछ कार्डियक हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या जिनके शुगर लेवल्स डावाडोल रहते हैं, उनको ध्यान रखना है कि वो एक्सरसाइज कैसे करें, लेकिन विंटर वेदर इज बेटर टू एक्सरसाइज देन समर।
डॉक्टर सीमा, अभी बातचीत के दौरान आपने हाइपोथर्मिया की बात की, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि अब अक्सर हम ये सुनने लगे हैं कि फिजिकल वर्कआउट के दौरान हमें कुछ खास तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। सर्दियों में फिजिकल वर्कआउट के दौरान यदि हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें हाइपोथर्मिया होने का खतरा बना रहता है। यह बात कितनी सही है? यदि ये बात सही है तो ये बताएं कि हमें फिजिकल वर्कआउट के दौरान किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए जो इस तरीके की बीमारियों से हमें बचा सकें।
देखिए, इसमें सिर्फ इतना है, हम ये तो महसूस करते हैं सब लोग कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है हम कपड़ों की लेयर बढ़ाएं तो हम गर्म हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे जैसे हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं तो हम ये लेयर्स कम कर दें। जितनी हम ये इंसुलेटिंग लेयर्स कम करेंगे उतना ही हमारा जो स्वेट एक्यूमुलेशन है वो सब कम होएगा, तो उसके कारण होने वाली प्रॉब्लम्स, ज्यादा कपड़े पहनने से अगेन एनर्जी हीट बिल्डअप होगी, वो हमें तकलीफ दे सकती है। तो इसलिए जैसे जैसे हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं उतनी ही हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाएं, उतनी ही हमको इंसुलेटिंग लेयर मिनिमाइज करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एल्डरली है, घर में रहते हैं और बाहर जा रहे हैं और उनको रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर, बिकॉज एज के साथ साथ ये सब प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, ये सब आ जाता है, तो वो अपने आप को कवर करके निकले, ये लाजमी है।
डॉक्टर सीमा, मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। हम आजकल ये देखते हैं कि लोग जिम में किसी फिजिकल ट्रेनर के अंदर एक्सरसाइज करने की जगह देखा देखी में एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि वो जो जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तरीका गलत होता है। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है।
डेफिनेटली अगर हम एक्सरसाइज जैसे जिम में अगर देखा देखी करें तो उससे इंजरी हो सकती है। अगर हम गलत एक्सरसाइजेस करें और अचानक से कुछ करें तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। इट कैन ऐड टू आवर बर्डन मच मोर। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं स्लिप डिस्क लेकर जिम से, क्योंकि वो अचानक से रातों रात चाहते हैं कि अब हमारी बॉडी एकदम फिट हो जाए। तो बहुत जरूरी है सबको समझना कि इट शुड बी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, और धीरे धीरे उस प्रोग्रेशन में हमने क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज को बढ़ाना है। लेकिन शुरुआत लाइट एक्सरसाइज से करनी है और धीरे धीरे मॉडरेट और विग्रस इंटेंसिटी पर जाना है।
रुक्सीमा, आजकल हम बहुत सारे ऐसे मामले देख रहे हैं जिसमें लोगों को जिम करते हुए चेस्ट में पेन होता है, वो अचानक वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं, लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाए इससे पहले वो कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या ऐसे कोई मेडिकल टेस्ट हैं जिनके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी कैपेसिटी कितनी है, हमें कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, और वो ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि अब उन टेस्ट की ज़रूरत आ पड़ी है।
हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है जिसको हम अपने फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में बहुत यूज करते हैं, फटीग, थकान, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेथलेसनेस होना, सांस का उखड़ना, है ना। तो जो फटीग है उसको मेजर करने के लिए है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, कि किस इंसान ने कितना एक्सर्शन या भारीपन महसूस किया कोई भी काम को करते हुए। कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कदम चलेंगे और उन्हें लगेगा उनकी सांस फूल रही है, कुछ लोग हैं जो बहुत किलोमीटर भी चलेंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये हर एक का अपना लेवल ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन है कि मैं कितनी एक्सर्शन या थकान महसूस कर रहा हूँ। तो हम अक्सर लोगों को ये बोलते हैं कि अगर हम एक माप बना लें 1 से 10 के बीच में, और जहाँ 1 हो मिनिमल एक्सर्शन, बिल्कुल थकान नहीं, और 10 हो कि मुझे अब एक कदम भी नहीं उठेगा, मुझे बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, तो हम अगर 4 के नीचे नीचे अपने ही लेवल में, उस स्केल में 4 के नीचे नीचे कि लाइट है ना, कि मुझे हल्का थकान महसूस हो रहा है, अगर हमें उसमें एक एडल्ट और एल्डरली उसमें रहता है तो वो कंफर्टेबल है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं अगर वो लोग 5-6 समवॉट हार्ड 7 में रहे वो ठीक है, तो दैट इज मॉडरेट। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो 7-8-9 तक जा सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार एक्सरसाइज करने की सोच रहे हैं और उनको लाइट उसमें ही रहना बेहतर है, मतलब मॉडरेट टू लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस करना ही सही है उनके लिए।
मेरा अगला सवाल एज ग्रुप को लेकर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोग जिम में देखा देखी में एक्सरसाइज करते हैं। सामने वाला वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो मैं भी वेट लिफ्टिंग करूंगा, सामने वाला 50 किलो का वेट उठा रहा है तो मैं भी 50 किलो का वेट उठाऊंगा। उस वक्त वे लोग ये भूल जाते हैं कि वो लोग किस एज ग्रुप से आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यह करना लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है।
जी, तो पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगी, हर किसी एज ग्रुप में अगर मैं एक्सरसाइज करने की सोचता हूँ और स्पेशली अगर मैं जिम जाने की सोच रहा हूँ तो मुझे कुछ कंपोनेंट्स बहुत ध्यान रखने हैं। सबसे पहला उसमें है वार्म अप, जो हर एज ग्रुप को करना है। दूसरा है कंडीशनिंग एक्सरसाइज, तीसरा है कूल डाउन और चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। ये हर एज ग्रुप में सबको सोचना है। फर्क सिर्फ इतना है, जो लोग यंग हैं वो 5 से 10 मिनट का वार्म अप करें तो ठीक है
जी,
उससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम वार्म अप भी कर लें, हम अक्सर कूल डाउन नहीं करते, वो भी उतना ही जरूरी है। और जो 60 या अबव हैं, उनका वार्म अप ही 10 से 15 मिनट कम से कम होना चाहिए
जी।
ये जरूरी है। दूसरी चीज, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी, एज ग्रुप की जगह क्या वो सेडेंटरी है या एक्टिव है। अगर बहुत एल्डरली है तो उनके लिए चीजें फर्क है, क्योंकि उनके साथ कुछ कंडीशन जुड़ी रहती हैं जो उम्र के साथ साथ आ जाती हैं, जैसे बोन हेल्थ हो गई है ना। लेकिन अगर हम एज ग्रुप देखें तो ठीक है, यंग एडल्ट और इवन एल्डरली, अगर जो रेगुलर एक्सरसाइजर है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जो कुछ ही दिन जाने लगे और वो देखा देखी कुछ करने लगे तो डेफिनेटली रिस्क ऑफ इंजरी और चांसेस ऑफ इंजरी आर वे हाई। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी बॉडी को सुने। इसीलिए मैंने बताया कि एक्सर्शन, मैं कितनी एक्सर्शन परसीव कर रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि मुझे कितनी थकान हो रही है कोई एक्टिविटी करने में, मैं उसका ध्यान दूँ और उसी हिसाब से अपनी एक्सरसाइज मुझे कितनी इंटेंसिटी में करना है, कितने समय के लिए करना है, कौन सी तरह की करना है और धीरे धीरे उसे कैसे बढ़ाना है, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए हर इंसान के जो एक्सरसाइज कर रहा है। जो रेगुलर एक्सरसाइजर है उन लोगों के लिए है कि वो मॉडरेट इंटेंसिटी शुरू करेंगे, हफ्ते में 5 दिन करेंगे और यही चारों कॉम्पोनेंट जरूर जहन में रखेंगे कि हम वार्म अप भी करेंगे, हम बीच की एक्सरसाइज 20 मिनट के करीब, जैसे वार्म अप 8 से 10 मिनट किया, 20 मिनट एक्सरसाइज किया, 10 मिनट फिर कूल डाउन किया, तो 40 मिनट ये हो गया, तो 30 से 40 मिनट एवरेज यंग एडल्ट कैन डू इट वेरी नाइसली। 30 टू 60 मिनट अ डे आल्सो वन कैन डू, मगर मोटा मोटी लगा के चले तो 150 मिनट पर वीक मॉडरेट एक्सरसाइजेस। और जो लोग विग्रस एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए अराउंड 75 मिनट पर वीक।
यानी इसी के हिसाब से हम पर डे एक्सरसाइज का एवरेज निकाल लें और हमारी पर डे एवरेज एक्सरसाइज इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
हाँ, और कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे आपने वेट्स का बोला, जो रेजिस्टिव एक्सरसाइज होती है ना, वो लगातार ना करके हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन और प्रोग्रेसिव होना है। ये नहीं कि आपने जैसे बोला कि कोई 50 किलो का कर रहा है तो सामने वाले को लगा मैं भी 40-50 उठा लूं, नहीं, आपने अपना लेवल देखना है कि मेरी कितनी ताकत है, मैं कितने दिन से वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या मेरी मांसपेशियां, क्या मेरी बोन्स वो सब वजन ले सकती हैं, तो मैंने उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करना है।
इसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। हम सब दिल्ली NCR के पॉल्यूशन से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ऐसी पॉल्यूशन की स्थिति में हमारा सुबह के समय वॉक करना या वर्कआउट करना कितना सुरक्षित है?
जी, आजकल का एयर क्वालिटी देखते हुए, जो अभी इतना ज्यादा पॉल्यूटेड एयर है स्पेशली दिल्ली और अराउंड एडजॉइनिंग एरियाज में, तो इन फैक्ट हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस और वो भी आउटडोर एक्सरसाइजेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है और उसके चलते बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा रहता है। तो ड्यूरिंग द डे जब विंड क्वालिटी बेटर है और थोड़ा टेम्परेचर बेटर है तो एक्सरसाइज करना एक बेहतर समय है, इस विंटर सीजन में जहाँ इतना पॉल्यूशन है। बट अदरवाइज एक्सरसाइज, अगर हम किसी बहुत क्लियर जगह में हैं तो एक्सरसाइज सुबह करने में कोई नुकसान नहीं है. बट इट इज नॉट दैट कि अगर आपका सुबह का समय मिस हो गया तो आप दिन में कभी नहीं कर सकते हैं. बस खाने और एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा सा तालमेल और डिफरेंस बना के रखना जरूरी है.
इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि वॉक करने का सही तरीका क्या है, खाने से पहले हमें कैसी वॉक करनी चाहिए और खाने के बाद की वॉक कैसे होनी चाहिए.
हाँ, इसमें यह है कि हम अक्सर बात करते हैं अगर कोई नॉर्मल है और धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो ब्रिस्क हम उसे बोलते हैं जब दो चलते लोग आपस में बात ना कर पाए. तो वो वॉक हम सुबह या दिन में कभी भी जब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो करना सही है. जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनके लिए वॉक नहीं, वर्कआउट के बाद की मील की इम्पोर्टेंस होगी. मगर इधर जो लोग रेगुलर वॉक में जाते हैं, खाने के बाद हमको रिलैक्स्ड वॉकिंग या व्हाट वी कॉल एज स्ट्रोल, वो वॉक करना चाहिए. लेकिन पहले हमको ब्रिस्क वॉक करना बेहतर है.
ये ब्रिस्क वॉक को थोड़ा विस्तार में समझाएंगी?
हाँ, इसमें ये है कि मैंने बोला ना, जैसे दो लोग अगर साथ में सैर करने निकले तो वो आपस में अगर बात नहीं कर पा रहे, अगर हम टहलते हुए बात कर रहे हैं तो उसे ब्रिस्क वॉक नहीं बोलेंगे. जब हम दो लोग, हमारी सांसें इतनी तेज हैं कि हम आपस में रूटीन में एक दूसरे की बात नहीं बोल पा रहे, समझ पा रहे, तो दैट इज ब्रिस्क. या हम उसको, आजकल बहुत लोग ऐसे वॉचेस पहनते हैं जिसमें हार्ट रेट आता है और आपका रेस्पिरेटरी रेट आता है, तो उससे भी हमें पता चल सकता है ब्रिस्क वॉकिंग के.
तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको बीमार बनाने की ताक में बैठी रहती हैं. इन बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि आप रेगुलर वर्कआउट करें. सेहत की बात में आज सिर्फ इतना ही. जल्द ही आपकी सेहत से जुड़े नए मसले के साथ एक बार फिर हाजिर रहूंगा. तब तक के लिए नमस्कार. और डॉक्टर सीमा ग्रोवर, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.